ओम शांति। वर्तमान हमारे जीवन में लौकिक और अलौकिक ईश्वरी सेवा में भी हम देखते हैं साधनों का बहुत प्रयोग होता है। कई बार बाबा ने इशारा भी दिया है, बच्चे कहीं साधनों के पीछे साधना खो न देना। किस तरह हम साधन और साधना का बैलेंस रख सकते हैं, आइए इसी विषय पर आज हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच एक बहुत विशेष हस्ती, बाबा का एक अमूल्य रतन, लंदन से पधारे हुए आदरणीय जयंती बहन जी उपस्थित है। सभी एक हाथ हिलाकर जयंती बहन जी का बहुत 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 स्वागत करते हैं। मात्र 8 साल की उम्र में आप पहली बार साकार बाबा से मिले और 1968 में आपने अपने जीवन को ईश्वरी सेवा अर्थ समर्पित किया। दादी जानकी जी के अंग संग रहने का परम सौभाग्य जयंती बहन जी को प्राप्त हुआ है। इस परमात्म ज्ञान को विदेश तक पहुंचाने तथा दादी जानकी जी को विदेश ले जाकर विदेश सेवा की नींव डलवाने के आप ही निमित्त बने। 1968 से लेकर एक कुशल वक्ता, एक प्रचारिका एवं शांति दूत, एम्बेसडर ऑफ पीस के रूप में आपने अनेक देशों के आत्माओं की रूहानी सेवा एवं पालना की है। वर्तमान समय आप यूरोप की सेवाओं का निर्देशन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जिनीवा में आप ब्रह्मा कुमारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय समितियों के आप सदस्य हैं। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की एडवाइजर एवं इंटरफेथ कमेटी के भी आप सदस्य हैं। अनेक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के आप आयोजिका रह चुके हैं। 80 से अधिक देशों की ईश्वरीय सेवाओं का आप संचालन कर रहे हैं और फिर भी आपके स्वभाव में, आवाज में जो मधुरता है, जो सरलता है, सचमुच आप पर ये टाइटल सार्थ होता है, बाबा का फ्लाइंग एंजल। तो आइए हम क्लास सुनेंगे साधन और साधना। आदरणीय जयंती बहन जी।
ओम शांति। वैसे ये जो समय मुकर्र होता बाबा के दिन के आने का और सवेरे क्लास का, उसमें अपने निर्वय भाई साहब होते, ड्रामानुसार वो अभी यहाँ हाजिर नहीं है, परंतु खुशी की बात है कि डॉक्टर्स ने छुट्टी दे रखी है, तो शाम को बाबा के सामने वो जरूर हाजिर होंगे। परंतु मुझे आज्ञा दी गई है कि अभी ये जो समय है उसमें कुछ विचार आपके सामने रखें। और मुझे बहनों ने सुनाया कि दादी ने क्लास में बताया कि किसी ने प्रश्न पूछा है कि साधन और साधना का अंतर क्या, तो मैंने ही दादी जी को फोन किया था सवेरे और खुशी की बात दादी ने सुनाई कि वो सवेरे अमृत वेला भी कराएंगे, करा चुकी थी और फिर मुरली की तैयारी चल रही थी। तो फिर दादी ने पूछा टॉपिक, तो मैंने कहा कि ये, तो दादी ने कहा कि अच्छा साधना है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और जिसका लगातार जब से बाबा के पास आए हैं उन्होंने ये अभ्यास किया होगा, बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक बाबा के संग जोड़ने का, तो वो साधना सच्ची साधना कहेंगे। परंतु जैसे बहन ने बताया कि साधन भी आज के समय हर प्रकार से कलयुग के अंत में, जबकि माया खूब नाच कर रही है, तो माया के कितने खिलौने, कितने साधन अपने पास हाजिर है। वैसे तो ये साधन सपनों होते तो आपके सामने ये बातचीत करने का भी मौका नहीं बनता, ये स्क्रीन्स का साधन न होता तो आज शाम को आप बाबा से अच्छी रीति दृष्टि नहीं ले पाते। तो साधनों में फायदा तो बहुत हुआ है, विदेश के सब सेवा केंद्र और भारत में भी बाबा को ऑनलाइन देखते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार साइंस ने इसी समय ऐसे साधन बनाए हैं जो अभी बाबा बोल रहे और वहाँ दूर दूर तक देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मानो कि 15 साल पहले तो ये कुछ भी नहीं था, आवाज़ भी इतना दूर उस समय सुनना मुश्किल होता था। फिर हम लोग इंतज़ार करते थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो फिर हम देख सकेंगे। बाबा की मुरली तो जल्दी पहुंच जाती थी, परंतु वीडियो हमको करीब 1 सप्ताह के बाद ही पहुंचता था। तो साधनों से हम सबकी कितनी उन्नति हुई है, कितना हम ज्ञान को और अच्छी रीति से ग्रहण कर सके हैं अथवा ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत रहा है। बाबा चाहे दादियाँ चाहे और भी अपने परिवार के भाई बहन, उन सब को हम साधनों द्वारा बहुत बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि बाबा जो कहते हैं लास्ट को फास्ट, यदि कोई भी कौन है जो फर्स्ट टाइम आया है मधुबन इस बार, शाम को फिर बाबा आपसे ये प्रश्न पूछेगा, परंतु मुझे भी थोड़ी प्रीव्यू मिल गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि करीब आधा क्लास तो पहले बारी आने वाले हैं, तो खास जो अभी लास्ट में आए हैं और फास्ट में जाने चाहते हैं, ये जब सब भिन्न 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 प्रकार के साधन है, यदि आप और कोई बात न सोचने चाहो न देखने चाहो, अभी बाबा का इतना खजाना ज्ञान का मिल रहा है सब साधनों द्वारा, चाहे पीस ऑफ माइंड चैनल, चाहे यूट्यूब, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं याद आता और लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। तो उन सब साधनों में से कितनी कितनी प्राप्ति हो सकती और हो भी रही है, और यदि कोई बहुत आगे बढ़नी चाहे इन सब साधनों का प्रयोग करे तो बहुत कुछ प्राप्ति हो करके बिल्कुल फास्ट जा सकते। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी बाबा कहते हैं कि जो शुरू में दादियाँ सेवा पर निकली, उनके दृष्टि से ही कुछ जादू होता था और कुछ आत्माएं वारिस क्वालिटी निकली, जो फिर यज्ञ की स्थापना के कार्य में निमित्त बने और बहुत अच्छा सहयोग देते रहे हैं तन मन धन से। तो दादियों के पास कौन सा साधन था? आपने कहानियां तो अनेक दादियों की सुनी होंगी, तो मुझे मालूम है कि सब दादियों के पास एक जबरदस्त साधन था, वो कौन सा था? दृष्टि। बाबा तो साथ थे ही, परंतु बाबा को साधन हम नहीं कहेंगे, बाबा तो बीज है, बाबा से ही सब कुछ मिला है। तो बाबा तो फिर जो हमें सिस्टम बना करके दिया है, जिस द्वारा हम आज सब कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परंतु बाबा ने उनों के अंदर ऐसे दृष्टि का अनुभव कराया, ऐसे योग शक्ति साधना उनों की 14 वर्ष की जो बट्टी चली थी, तो वो 14 वर्ष की बट्टी की साधना से फल स्वरूप उनों की दृष्टि में ऐसे रूहानियत, ऐसे आकर्षण, जो कोई भी सामने देखते थे तो बस वो एक पल के अंदर आत्मा उड़ जाती थी, और उस आधार पर वो और ज्ञान समझने की कोशिश करते थे और बाबा के बन जाते थे। और आपने ये भी सुना है कि एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी अथॉरिटी, अपना जो अनुभव होता वही एक सर्वशक्ति होती, जिसके द्वारा कोई उसको चैलेंज, जिसके सामने कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोई आपको कहे कि मेरा तो ये अनुभव है, परंतु अपने अनुभव के साथ साथ आपको भी उसका थोड़ा सा झलक का अनुभव कराए, तो ये आप कहेंगे कि हाँ आप कहते हो आपका अनुभव है, परंतु हमारा तो अभी तक अनुभव वो है ही नहीं। और थियोरी की बातें कितना भी सुनाओ, परंतु वो भी उनका जब तक अनुभव कुछ नहीं हुआ है तो वो टिक नहीं पाते हैं। एक युगल आता लंदन में बहुत समय से, तो वो जो बहन थी, दोनों की बुद्धि बड़ी फर्स्ट क्लास, दोनों प्रोफेशनल्स, दोनों राइटर्स, मुख्य मुख्य जो इंग्लैंड के अखबार है उन्हों के, तो दोनों की बराबरी ही थी जोड़ी। और बहन बहुत जल्दी जल्दी ज्ञान समझती गई, और भाई वो जिस खरी उसको दृष्टि मिलती थी वो उड़ जाता था, बिल्कुल गुम हो जाता था। और जल्दी ही कुछ दिनों के बाद ही दादी ने कहा कि तुमको 4 बजे का अनुभव करना चाहिए। और जिस छोटे से सेंटर पर आते थे वो अपना जो मुख्य स्थान है वहां से करीब 40 मिनट्स जर्नी थी, तो उन्होंने दादी को कहा हाँ हम अमृत वेला करेंगे। तो फिर दादी को और उमंग आया, दादी जब देखती है ना कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा, तो बाबा कहते ना कि डांसर देखता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो डांसर और अच्छी डांस करता। तो इसी तरह से दादी ने भी देखा कि बहुत अच्छा उमंग में है और इस तरह से कह रहा है कि हाँ मैं 4 बजे आऊंगा। तो दादी ने कहा ठीक है, मैं अभी जब मैं आ सकूं तो मैं रात्रि को उस सेंटर पर आ जाएंगी, रात रुकेंगी और 4 बजे का योग मैं करा करके फिर मुख्य सेंटर पर जाएंगी, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ी सभा होती थी, यहाँ तो 5-7 होते थे और वहां तो करीब 200 हर रोज सवेरे होते थे। तो दादी कुछ दिनों तक, लंबे समय तक रात्रि को वहां जाना, 4 बजे का योग कराना, फिर भागते भागते दूसरे सेंटर पर पहुंचना और वहां पर फिर मुरली और क्लास कराना। क्यों? क्योंकि दादी देखती थी उसको योग का रस बैठ गया है पहले दिन से ही। और आज की रिजल्ट ये है कि जिसको ज्ञान बड़ा अच्छी तरह से समझ में आने लगा, वो आज अभी तक हम लोगों की फ्रेंड है, परंतु वो कहेंगे कि मैं बीके नहीं हूँ, मैं तो बीके की फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ। और वो भाई वो तो थोड़े समय के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से पक्का योगी भी बन गया और आज तो बाबा का विशेष कार्य के निमित्त चल रहा। तो उसको तुरंत ज्ञान की समझ नहीं आई, परंतु क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड था तो बहुत सारे प्रश्न उठते थे, आप समझ सकते हैं, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर इन सब बातों का बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। परंतु जो उसको योग का अनुभव हो रहा था उसने जैसे कि अपनी बुद्धि को शांत कर दिया और जो अभी के प्राप्ति है उस प्राप्ति को आगे बढ़ाता रहा। और फिर बाद में तो धीरे धीरे एक एक बात को अच्छी तरह से स्पष्ट समझने लगा। परंतु कहने का मतलब कि जिसको वो कुछ अनुभव हो जाता उसकी साधना भी शुरू हो जाती और उसकी नींव बहुत मजबूत हो जाती। और यदि अनुभव नहीं होता कोई भी बात का तो फिर तो थोड़ा सा लगता है कि इतने सब नियमों को कैसे पालन करें, सवेरे उठने का मतलब क्या, उनको कुछ कम प्राप्ति का अनुभव होता तो फिर वो थोड़ा ढीले पड़ जाते। तो दादियों की दृष्टि द्वारा विश्व की सेवा हुई है, भारत की उस समय तो सेवाएं रही, परंतु विश्व में भी जो सेवाएं हुई है, एक दादी नहीं कई दादियों ने विदेश की सेवाएं की है, सभी दादियों ने अपना सहयोग दिया है और सभी के दृष्टि द्वारा अनेकों को अनुभव भी रहा है और वो पक्के ब्राह्मण भी बन गए हैं और अभी बाबा के निमित्त बन करके कार्य भी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि साधन शुरू में भारत में कुछ भी नहीं था और विदेश में भी जब सेवाएं शुरू हुई है, साधन एक्सटर्नल रीति से कुछ भी नहीं था। मानो कि आज न सिर्फ ये माया के खिलौने का साधन है, परंतु बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे साधन हमें बना करके दिए हैं, जिससे हमें अपनी पुरुषार्थ के लिए बहुत सहयोग मिलता। मानो कि एक बाबा और बाबा की मुरली, ये तो अपने जीवन का फाउंडेशन है, उन्हों को मैं साधन भी नहीं कहेंगे। परंतु जो बाबा ने जगह जगह पर स्थान बना करके दिए हैं, जिसको हम सेंटर कहे, गीता पाठशाला कहे, कुछ भी नाम आप लियो, परंतु वो कितना सुंदर साधन है। यदि सेंटर न होता, गीता पाठशाला न होती, तो आप सोचो कि अकेला हम अमृत वेले योग करके बैठ के टाइम पर मुरली पढ़े, ज्ञान स्नान करें, उस टाइम में जरूर कुछ फर्क पड़ जाता, आगे पीछे वो एडजस्ट हम कर लेते। परंतु बाबा ने स्थान बना करके दिया है, साधन है जिससे हम अच्छी तरह से स्टडी में लग जाएं। तो मुख्य साधन तो बाबा ने स्थान बना के दिए हैं, और दूसरा फिर बाबा ने लिटरेचर कितना तैयार करवाया है, अनेक आत्माएं निमित्त बने हैं उस कार्य के लिए भी। परंतु लिटरेचर भी बहुत बड़ा साधन है बाबा के परिचय प्राप्त करने का, बाबा के नजदीक आने का, स्टडी करने का। और जिस समय दादियां निकली है सेवा पर, न कोई सेंटर थे, स्थान ही नहीं थे। दादी जान के जो बीच है वहां पर, वर्ली बीच, वहां पर बैठ करके ज्ञान सुनाती थी और बाबा से छुट्टी ले रखी थी मूंगफली खाने के लिए, नहीं तो पहले बाहर की मूंगफली भी नहीं खाते थे। मूंगफली और केला कितने समय तक दादी का भोजन ही वो होता था। बस सवेरे निकल गई सेवा के लिए, सेंटर नहीं था, अपनी लौकिक माँ के घर पे जाकर रही और वहां पर अपना बैठ गई। एक व्यक्ति आया, उसको थोड़ा ज्ञान सुनाने लगे, 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाते। तो पहले तो सेवाएं सभी दादियों ने इस तरह से ही की है, कहाँ बगीचे में बैठ गए, कहाँ गंगा के तट पर बैठ गए, परंतु हाथ में कुछ कागज भी नहीं, कुछ छपाई के बुक्स भी नहीं, कुछ चित्र भी नहीं। चित्र भी धीरे धीरे प्रिंट होते गए, परंतु उन्हों की दृष्टि और उन्हों के ब्रुकुटि में वो चमक थी और उन्हों के बोल में, बाबा जो कहती है ना कि आज वो तलवार जो है उसके अंदर जोर नहीं है, तो उन्हों के मुख में इतनी वो योग की शक्ति जो उन्हों के थोड़े शब्दों से भी बिल्कुल आत्मा का परिवर्तन हो जाता था। तो कोई साधन बिगर भी उन्होंने अपनी तपस्या के जीवन को कायम रखा और फिर साथ साथ सेवा भी करते गए। तो उन्हों की साधना जो रही, न सिर्फ वो 14 वर्ष की बट्ठी का अनुभव, परंतु बाद में भी उन्हों की इतनी त्याग वृत्ति, जो ये भी आपने कहानियां सुनी है कि एक जिज्ञासु दिल्ली में, आजकल हम शक्ति नगर कहते, उस समय कमला नगर में शुरू हुआ था, फिर वो शिफ्ट हुआ, तो कमला नगर सेंटर में वो आता, ज्ञान सुनता, कुछ दीदियां दादियां वहां पर है और वो पूछता कि मैं आपका भंडारे देखने चाहता हूँ। दोनों को आश्चर्य लगता ये क्यों पूछता, परंतु उसने कुछ बात नोटिस की होंगी जरूर। बहुत छोटी सी जगह है और कोई कुर्सी सोफा तो नहीं, पट पड़ी बैठ करके दृष्टि दियो ज्ञान सुना। तो उसको भंडारे में लेके गए और भंडारे में क्या देखा, एक छोटा सा स्टोव है और बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसको आश्चर्य लगा कि ये बहने कैसे चल रही है। तो फिर उसने बोड़ी आटे की भेज दी और दादियों ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने अपने लिए वो नहीं स्वीकार किया, परंतु फर्स्ट उनको यज्ञ याद आया और वो बोड़ी मधुबन भेज दी। तो कहने का मतलब कि जब त्याग वृत्ति होती और यज्ञ के प्रति भावना होती तो फिर उस स्थिति में भी योग कितना सुंदर चलता, योग के आधार पर ही जीवन रहता। और फिर आप सोचो कि वो साधना इनों की चालू ही रही। फिर जब वो समय आकर पहुंचा कि अनेक आत्माएं सहयोगी बनते गए और अभी तो आप देख रहे हैं कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं अथवा साधन भी मौजूद है, परंतु उनों के त्याग का ये सब जो चल रहा है, ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों के त्याग के आधार पर ये अभी सब फल हम खा रहे हैं, ताकि हमें ऐसे साधन तैयार मिल रहे हैं जो हमें मदद करे अपनी साधना के लिए। परंतु कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि ये सब हमको कैसे मिले हैं और फिर उसका मिलने का मतलब भी क्या। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे जब बाबा की पधरामनी होती साइंस भी इतना वृद्धि को प्राप्त करती, जो फिर सब प्रकार के साधन आपको मिल जाते हैं आपकी उन्नति के लिए और बाबा का संदेश देने के लिए। और यदि वो बात याद नहीं रहती और हम थोड़ा उसी सुख में चले जाते हैं तो फिर उसमें भी हमारी साधना भूल जाती। दादियों ने कभी अपनी साधना को भूला नहीं है। उसमें आज के खिलौनों की बात एक मुझे याद आती, दो दिन पहले किसी ने मुझे ईमेल भेजा था, कुछ सेवा की बातें होती, कुछ अपने जीवन के प्रश्नों की बातें होती और कभी कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें होती, कुछ अलग प्रकार से। तो ये था एक आइंस्टाइन का बोल। आइंस्टाइन बहुत करके तो जानते हैं, वो तो विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट था। तो थोड़े समय पहले ही तो उसने ये बोला कि जब टेक्नोलॉजी मनुष्य की बुद्धि को ऐसे प्रभावित करती जो मनुष्य ये भूल जाता कि आपसी संबंध अधिक इम्पोर्टेंट है और वो टेक्नोलॉजी को ही महत्व देता, तो फिर उस समय संसार पागल कहेंगे। और फिर उसके साथ वो लिखित थी, फिर उसके साथ कुछ चित्र थे। एक चित्र था कि कुछ लोग, नौजवान लोग, वो कॉफी पी रहे हैं, आपस में बैठे हैं और वैसे तो आप जानते हैं किसके साथ चाय पानी कॉफी पियो तो एक कम्युनिकेशन का वो मौका बन जाता। वैसे तो आपस में मिलते फिर तो हलो हलो करके चले जाते, परंतु बैठेंगे आपस में लेन देन करेंगे कॉफी पियेंगे तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और ये चार लोग बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कॉफी टेबल पर है परंतु वो कोई अपना मोबाइल देख रहा, कोई अपनी ब्लैकबेरी देख रहा, कोई अपनी कंप्यूटर देख रहा, चारों ही लोग अपने दूसरे संसार में मस्त है। और फिर दूसरा चित्र था कि वो लोग साइट सीन करने गए हैं, अलग अलग फेसेस थे, अलग अलग सिचुएशंस, और गाड़ी उसका ऊपर का हुड खुला हुआ है और जो चार लोग उसमें भी चार लोग हैं, बहने हैं भाई हैं, परंतु वो देख नहीं रहे हैं जो साइट सीन करने के लिए आए हैं, वो अपनी जो कुछ भी उनके हाथ में डिवाइस है उसको देख रही है, और जो ड्राइव कर रही है लड़की, मुश्किल बात तो ये है कि एक आंख है रोड पर, दूसरी आंख है अपनी मोबाइल पर। तो आप सोचो कि डेंजर की कितनी बात, परंतु जबकि जिस कार्य के लिए निकले हैं तो वो कार्य नहीं हो पा रहा। तो ऐसे भिन्न भिन्न सिचुएशंस, चार भिन्न प्रकार के सिचुएशंस वो दिखा रही हैं। तो कहने का मतलब कि साधन टेक्नोलॉजी आज संसार को इतना अपने तरफ खींच के ले गई है, तो बुद्धि बिल्कुल उसमें लिप्त हो गई है, और रियलिटी को आप समझ रहे हैं, जान सकते हैं। तो जब उनों की बुद्धि ऐसे लिप्त हो गई है, संसार की स्थिति ऐसे हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि संसार किस तरफ जा रहा, बिल्कुल पागलपना। टेक्नोलॉजी का मतलब है कम्युनिकेशन, ताकि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो, परंतु आज उसी जगह पर बैठी हैं, उसी घर में बैठी हैं, और एक दो को ईमेल भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांति से बैठ करके आपस में लेन देन करके बातचीत करने के लिए उनका ख्याल ही नहीं है। फिर कहेंगे हमको समय नहीं है, परंतु समय फिर किन बातों में जा रहा, और हमारा समय किस लिए है वो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो मैंने संसार की बातें बताई, परंतु ब्राह्मणों में भी हम देखते हैं कि जिस घड़ी जिस कार्य के लिए वो साधन हमें मिला है, जिस लक्ष्य से हमने वो साधन रखा है, क्या हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो साधन यूज कर रहे हैं, या जो साधन है आजकल उसको आप अच्छी तरह से प्रयोग करो, आपकी साधना में मदद मिलेंगी। आप उनों का टेक्नोलॉजी का आपके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए और आपकी बुद्धि उसमें लिप्त हो जाए, आपके 20 घंटे भी उसमें चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि मेरा समय कहाँ गया, बिल्कुल हिसाब ही नहीं रहेगा। उसने आपकी बुद्धि को खींच लिया, और संसार भर का जो भी इन्फॉर्मेशन है, अच्छा है चाहे बुरा है, और आजकल संसार में अच्छा कितना है, कुछ परसेंटेज, और बुरा कितना है, बिल्कुल सागर के समान। तो यदि हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लियरली इस बात को याद करती कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और साधन के प्रयोग का लक्ष्य क्या है, तो हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे। बाबा ये नहीं कहता कि उनको यूज ना करो, परंतु अच्छी तरह से यूज करके उनों का आधार लेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। परंतु आदि सेवा के समय ये कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी साधना की शक्ति और दृष्टि, और उस आधार पर दादियों ने अपनी जीवन की स्थिति को ऐसे बना करके रखा कि जैसे मम्मा बाबा की छत्र छाया में मधुबन में पलते थे, मम्मा बाबा की छत्र छाया उनों के साथ ही साथ चलती रही, और जहां भी जाते थे वहां पर परिवार नहीं था, परंतु उनों के द्वारा बाबा परिवार की रचना कर लेते थे। पहले तो बहुत बेहद के परिवार में रहे, इतना बड़ा संगठन, और फिर अकेले गए, दो गए, तीन गए, कुछ भी हो, परंतु उन्होंने फिर बाबा का परिवार नया बना करके रखा। तो साधना की रिजल्ट सेवा की बहुत सुंदर वृद्धि होती गई, और विदेश में भी मैंने देखा, बाबा जब दादी को विदेश भेज रहे थे तो बाबा ने दादी को कहा कि वो लोग कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनों को भी आप कुछ अनुभव कराएंगे तो वो बाबा के पास आएंगे। और जब शुरू में बाप दादा और दादी ने मुझे वापस लंदन अपने लौकिक घर में ही भेजा 1969 में. 68 में बाबा के पास आए, 69 बाबा ने अव्यक्त रूप धारण करके फिर अव्यक्त रूप में विश्व की सेवा आरंभ की. तो उस समय भी जब बाबा मुझे भेज रहे थे, बाबा ने कहा, बाबा तुमको सेवा के लिए भेज रही हैं, न कि कर्म बंधन के हिसाब से. तो मैं वो लक्ष्य लेकर के गई कि बाबा सेवा के लिए भेजा है, परंतु न कोई सेंटर तो स्थान भी नहीं, और हाथ में कुछ ऐसा भी कागज नहीं जो मैं विदेशियों को दे सकूं, न कुछ पुस्तक जो उनको मैं बता सकूं. तो एक्सटर्नल साधन कुछ भी नहीं, और सेवा भी उस समय दरवाजे कई बंद थे, उन दरवाजों पर खुड़काओ और उन्हों कोई बातें समझ में नहीं आती थी. तो मुझे मधुबन से एक बहुत अच्छा पत्र आया जो आपके काम की बात में बताने चाहती हूँ. उसमें था कि सेवा बेशक बाहर की रूपरेखा अभी ना भी हो, परंतु स्वयं की सेवा तो सदा है ही. तो मुझे याद आया कि जबकि दादियां पहले तपस्या करके फिर सेवा पर गई तो सेवा का रिजल्ट देखा. तो मुझे ख्याल आया कि मुझे तो वो टाइम ही नहीं रहा है वो तपस्या करने का. तो उस समय मैंने अपना तपस्या का टाइम टेबल शुरू किया. हर 2 घंटे के अंदर आधा घंटा योग करना, चाहे 30 मिनट एक ही समय, चाहे 15 मिनट 15 मिनट. तो और तो कर्म तो चलता ही था, आना जाना भी चलता ही था, परंतु लौकिक घर में बैठे मैंने ये तपस्या आरंभ की. तो उससे मुझे तो बहुत प्राप्ति हुई. ज्ञान का शुरू में जो अनुभव होता वो तो बहुत ही सुंदर होते, बाबा आत्मा को खींच लेते. फिर थोड़ा हम व्यस्त हो जाते हैं सेवा में, अच्छी भावना से अपना भाग्य बनाते हैं, परंतु फिर वो साधना कभी कभी भूल जाते. तो मुझे फिर से वो साधना करने का बहुत ही अच्छा समय मिला. 2 वर्ष तक वो हमारी साधना का समय मिला. दादियों का तो 14 साल, ये मुझे 2 साल बीच में मिले. परंतु उस बीच में फिर सेवा के थोड़ी थोड़ी झलक नजर आने लगी, परंतु कई प्रकार के कनेक्शंस बन गए. और फिर जब बाबा ने फर्स्ट डेलीगेशन को भेजा 1971 में, तो मुझे लगा कि जो मैंने तपस्या की है, साधना की है, उसका फल मुझे बाबा अभी ही साधन दे रहा. तो डेलीगेशन के आने से भी बहुत सेवाएं हो गई, परंतु सबसे बड़ा साधन बाबा ने दिया जो सेंटर खुल गया. तो 1971 में हम बाबा करण करावनहार अपने जो महारथी भाई बहन यहाँ से गए हुए थे, उसमें रमेश भाई जी, डॉक्टर निर्मला, अपने शीलंद्रा दादी, रोजी बहन, वो तो रमेश भाई डॉक्टर निर्मला हमारे साथ है अभी भी, परंतु रोजी बहन, शीलंद्रा दादी, जगदीश भाई, वो तो अभी अव्यक्त हो गए, परंतु उनों की तपस्या उस कारण से हमें इतना सुंदर स्थान, छोटी सी जगह थी, परंतु लगता था कि ये एक लाइट हाउस है, माइट हाउस है, उस द्वारा विश्व को रोशनी मिल रही है, ऐसे ही अनुभव होता था. और बात भी सही थी, बाबा अव्यक्त रूप, फरिश्ते रूप में घूम रहे थे, और साथ साथ बाबा ने स्थान भी दे दिया छोटा सा पहले. फिर तो उसका छोटे बीज से कैसे झाड़ बना है वो तो सारा इतिहास ही है. परंतु कहने का मतलब कि जब कोई भी आपको कोई राय देता है, आप यदि उस राय को अपने दिल से स्वीकार करते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदा हो जाता. तो मधुबन के पत्र की एक सेंटेंस से उस घड़ी हमारा साधन बन गया, हमें साधना की ओर बुद्धि योग खींचने का. तो चाहे पत्र हो, चाहे भाई बहनों की कुछ आपके प्रति शुभ भावना हो, कुछ शुभ राय हो, आप उस शुभ राय को दिल से स्वीकार करेंगे, वो आपके साधना के लिए एक फाउंडेशन बन जाएगा, निमित्त कारण बन जाएगा। क्योंकि बाबा खुद तो करण करावन हार है, तो खुद भी करते और जो अपनी निमित्त बनी हुई दादियां हैं उन द्वारा भी कराते, परंतु सारे ही परिवार द्वारा भी करा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ रियली, क्योंकि बाबा को हजारे भुजाएं चाहिए विश्व नया बनाने के लिए, स्थापना का कार्य करने के लिए। सिर्फ 8 भुजाएं की जरूरत नहीं है, 108 की भी नहीं, परंतु कितने सब जितने भी भाई बहन है उन सब की आवश्यकता है। तो साधना के लिए हमको कहाँ से भी प्रेरणा मिल सकती, और आज तो बाबा आने वाले हैं, तो बाबा हमें और भी इशारा देंगे कि किस तरह से हम बहुत अच्छी अपनी साधना बना करके रखें, ताकि कोई घड़ी आज चलो हमारे साथ सब कुछ हाजिर है, परंतु जरूर ऐसी भी घड़ी हर एक के सामने आएंगी जो आपके सामने न कोई मनुष्य आपका मददगार हो सकेगा, न कोई साधन आपके सामने हाजिर होंगे। बाबा ने वो बातें तो हमें पहले से ही बता दी है, और बुद्धि योग से हम भी समझ सकते हैं कि हर बात की कैसे स्थिति देखते जा रही हैं, कि बिल्कुल जो भी आधार है, जो भी साधन है, वो किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। तो वो सब फिनिश होने वाला है, और बाकी हमें साथ कौन देगा? एक बाप। तो जितनी हमारी अब भी साधना होंगी कि हम एक बाबा को अपना साथी बना करके रखें, अभी तो सब कुछ होते हुए भी, परंतु अपने को उन बातों से हम निर आधार बनाएं, यूज करें, और जितना समय यूज किया समाप्ति, और फिर अपनी साधना। और जो इन बातों को हमने अपनी साधना के लिए यूज किया है, तो हमारी साधना और पावरफुल बनती जाएंगी और मजबूत बनती जाएंगी। तो अभी के समय के लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि बाबा के कुछ आधे तो नए बच्चे हैं, और भी बाबा की तो अनन्य भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, परंतु हम अपनी साधना को और पावरफुल कैसे बनाएं? आपने देखा होगा कि एक बात तो बहुत करके सब अपनी कंप्लेंट देते हैं बाबा को, कभी मन में कभी पत्र में। वो बाबा को कहते हैं कि बाबा जितना हम पावरफुल योग लगाने चाहते हैं उतना नहीं हो पाता, आपसे मैं हाथ नहीं उठवाने चाहती हूँ अभी। बाबा को शाम को कुछ हाथ उठवाना होगा तो बाबा कहेंगे, परंतु ये आप जानो और बाप जाने। परंतु मुझे लगता है कि सबके मन में ये थोड़ा संकल्प होता कि हम और अपने योग को अच्छा बनाने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी सच्ची साधना होगी तो उस समय हमारे चेहरे और चलन से ही सेवा होंगी, और कोई बात की जरूरत ही नहीं होगी। और फिर साथ साथ उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे जो चेहरे से और चलन से सेवा होती रहे, जबकि हमने ऐसे योग अग्नि जलाया होगा जिसने हमारे पूर्व सब हिसाब किताब की बातें चुकतू हो गई हो। जब हमने ऐसे अग्नि के रूप में योग लगाया हो तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम दो बातों से देख सकते, अपने संस्कारों में परिवर्तन और साथ साथ अपने संकल्प की क्वालिटी में परिवर्तन। आज हमारे सामने दादियां हैं, आप जिस समय भी उनों के साथ मिलो, जब भी आप बात करो, तो उनों के मुख से क्या निकलेगा? बाबा और बाबा की बातें। बाबा की बातों के सिवाय कुछ और निकलेगा? कभी दादी हम लोगों को हंसी में कहती है कि देखो, कभी कोई प्रॉब्लम ले आता है और मैं उन्हों को कुछ बात सुनाती हूँ, तो वो मुझे कहती हैं, दादी आप तो हमें ज्ञान ही देती हैं। तो मैं संकल्प करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करते थे मेरे से? क्या वो अज्ञान एक्सपेक्ट करते थे मेरे से? फिर तो उसका आने का मतलब ही नहीं। वो एक्सपेक्ट ही करते थे कि मैं ज्ञान सुनाएंगे, तो जरूर मैं ज्ञान ही सुनाएंगे, और कुछ तो नहीं सुनाएंगे। परंतु वो समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग है और ज्ञान अलग है। परंतु रियलिटी ये है, यदि हमने प्रैक्टिकल लाइफ को अलग कर दिया और ज्ञान को अलग कर दिया, तो वो कभी भी हमारा प्रॉब्लम हल नहीं होगा और हम कभी साधना नहीं कर पाएंगे। जिस समय हम योग लगाने बैठेंगे, उस समय हमें प्रॉब्लम सामने आएगा। परंतु यदि हमने ज्ञान को यूज किया और उस प्रॉब्लम का हमने ज्ञान से अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति, अपनी स्थिति को बदल दिया, तो वो सृष्टि भी बदल जाती है। रियलिटी की वो बात बिल्कुल बदल ही जाती है। और यदि हमने उस परिस्थिति में ज्ञान को यूज नहीं किया, उस समय फिर वो प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाएंगी, और हमारे बुद्धि से ज्ञान तो भूला ही हुआ है, बाबा भी भूला हुआ है, और हम कैसे बाबा के साथ वो अनुभव कर पाएंगे कि बाबा हमारा साथी है और सर्वशक्तिवान की मदद से जरूर सब ठीक ही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो और बढ़ती जाएंगी, और फिर हम कहेंगे इस प्रॉब्लम के कारण हम बाबा को याद कर नहीं पाए। परंतु बाबा आप सोचो कब आते हैं? जब कलयुग है, जब आत्माएं बिल्कुल पतित है, जब आत्माओं का कर्म बंधनों का हिसाब इतना बढ़ गया है, जो बिल्कुल आत्माएं उस कारण से किसी न किसी प्रकार का दुख का अनुभव कर रही है, तो ऐसे ही समय पर बाबा आके हमें दवाई देते। जब पेशेंट बीमार होता तब दवाई दी जाती, पेशेंट ठीक है तो फिर तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। और यदि जिस समय बीमारी है, पेशेंट कहता है कि मुझे दवाई नहीं लेनी है, तो उस समय डॉक्टर फिर और क्या करेगा? तो जब परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, उस समय बाबा कहता अब दवाई लो अथवा ज्ञान को यूज करो। और ज्ञान को जितना यूज करते जाएंगे, आप उस दवाई का इफेक्ट देखते जाएंगे कि प्रॉब्लम हल होता जा रहा, और आप अंदर ही अंदर बाबा के गुण गान करेंगे कि हाँ, बाबा की मदद से, बाबा के ज्ञान की मदद से वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। परंतु आप बाबा को भूल गए, प्रॉब्लम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने आपका यहाँ जगह ले लिया, ज्ञान भूल गया, तो फिर तो क्या होगा? तो कहने का मतलब कि योग अगेन हमारी सदा प्रज्वलित रहे, उसके लिए हमको कांस्टेंट उस अग्नि के अंदर वो ज्ञान का घी डालना ही होगा। आत्मा के अंदर ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे, उसमें आत्मा की बात, परमात्मा की बात, चक्कर की बात, जो एंटरटेनिंग बातें बाबा ने बताई है मुरली के अंदर, जो एग्जांपल्स बाबा ने बताए हैं मुरली के अंदर, वो सब आपकी बुद्धि में घूमता रहे। और जितना वो सब बातें घूमती रहेंगी, उस आधार पर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन आई, आपको तुरंत पता होगा कि अभी मुझे अपनी स्थिति किस प्रकार की बना करके रखनी है। आपको तुरंत वो दवाई याद आएंगी कि इस सिचुएशन में कौन सी दवाई हमको काम आएंगी, और वो आप तुरंत उस दवाई को यूज करेंगे तो आपका योग और बढ़ता जाएगा और आपको मदद मिलेगी सिचुएशन फिनिश। कभी कभी बाबा कहते हैं मुरली में कि बाप ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बात शक्तिशाली है या बाप शक्तिशाली है। और हम लोग क्या कर देते हैं कि बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर बात को इम्पोर्टेंस दिया तो फिर तो साधन ढूंढेंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए इस बात को हल करने के लिए। परंतु साधनों से बात ठीक नहीं हो पाती, परंतु साधना से बात हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। और बाप को ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देवें और बाप से हर प्रकार का सहयोग लेवें तो बातें परिवर्तन हो जाती और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि एक बारी लेसन आता और हम उस लेसन में फेल होते तो क्या होता, फिर दोबारा वही परीक्षा आती, और वही परीक्षा आती ही रहेंगी जब तक हम वो सबक सीखे नहीं है और बाप की मदद लेकर के उसको हमने पार नहीं किया हुआ हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य टीचर में इतना धीरज नहीं होता, एक बारी आपने बात नहीं समझी तो आपको दोबारा कोई समझाएगा, तीसरे बारी फिर भी थोड़ा सा हेजिटेशन से संकोच से फिर भी आपको समझाएगा, चौथे बारी आप आएंगे वो हंस के कहेगा आपको तो बहन सीखने की भावना ही नहीं है, मैं सिंधी भाषा सीख रही थी शुरू शुरू में, और दादा विश्व रतन हमारा टीचर था तो मधुबन में तो बहुत उमंग से मैं सीखी, और फिर मैं विदेश वापस गई तो कुछ समय तक उस अभ्यास को चालू रखा, मुरली का एक पेज पढ़ने तक अभ्यास हो गया, फिर कोई और कार्य आ गए उसमें बिजी हो गई। फिर एक साल के बाद मैंने दादा को कहा कि दादा आप फिर से मेरे साथ बैठेंगे, तो वो बड़े प्यार से फिर दोबारा बैठा, फिर सेम थिंग, कुछ समय के बाद वो अभ्यास छूट गया और वो बात भूल गए। फिर दादा को बोला कि दादा आप फिर बैठेंगे, तो हंस के कहता है पक्का तुमको सीखना है, मैंने कहा दादा, परंतु फिर हो गया। तो फिर चौथे बारी तो मुझे संकोच हुआ, मैं दादा के पास जाऊं ही नहीं, दादा मुझे क्या कहेंगे, तो आज तक से मुझे सिंधी भाषा लिखने पढ़ने नहीं आती, तो वो चांस चला गया। तो कहने का मतलब कि कितना भी अच्छा देव आत्मा मनुष्य हो, परंतु तीन बारी चार बारी कब तक, परंतु ड्रामा तो अथक टीचर है, न सिर्फ एक बार चार बार, जब तक वो सबक नहीं सीखे हैं तब तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो ड्रामा बाबा टीचर है, तो ड्रामा भी साथ साथ बहुत ही अच्छा मीठा टीचर है और हमको बिल को सिखा करके ही छोड़ेगा। तो फिर जब हम ज्ञान यूज करना सीखते हैं तो फिर उस बात का हल हो जाता और योग अगेन हमारी और आगे तेज होती। तो ये तो है जो बाबा के पुराने बच्चे हैं। और फिर जैसे जैसे संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं तो प्रूफ मिलता है कि हाँ जीवन में ज्ञान यूज हो रहा है और बाबा की मदद से योग अगेन से उस संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। और फिर संकल्प की क्वालिटी भी चेंज होती जाती है, जैसे दादियों को देखते हैं शुभ भावना श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय और कुछ उनके पास न मन में है न बुद्धि में है न दृष्टि में है, कुछ भी बात हो परंतु उनकी स्थिति यहाँ है। किसकी गलती हो जाए तो भी उनों की दृष्टि यहाँ, उनों को फिर भी रहम से उनों को मदद करने के लिए, किसका भी कैसे भी संस्कार हो उनों की दृष्टि ऊपर उस आत्मा को उड़ाने के लिए। तो प्रैक्टिकल बाबा ने हम लोगों के सामने प्रूफ रखे हैं कि ऐसे स्थिति बनानी है। आप सोचो कि बाबा जब साकार में थे सबके लिए बाबा एग्जाम्पल, और फिर बाबा जब अव्यक्त हुए बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। बाबा ने कहा था कि जब तक सूर्य है तब तक दिन में तारे नजर नहीं आते, जब सूर्य आंखों से गायब हो जाता तभी फिर तारों का रिमझिम नजर आता। तो आप बच्चे भी धरती के तारे हो, वो तो आसमान के तारे हैं, परंतु आप हो धरती के तारे। और धरती के तारों का काम है अंधकार में और सबको रोशनी देना। तो अब बाबा अव्यक्त हो गए, आप सबको चांस मिला है तारे चमक करके सबको रोशनी देने का। तो मैं देखती हूँ कि उस समय बाबा एक साकार एग्जाम्पल थे। अभी जिन्होंने दीदी की, बड़ी दादी की पालना ली, अन्य और दादियों की पालना ली, कई बाबा के ऐसे भी बच्चे बैठे हैं, परंतु अभी भी जो दादियां हमारे सामने हाजिर हैं, वो भी हमारे सामने ऐसे चमत्कार तारे जो अंधकार में हमें एग्जाम्पल बन के रोशनी दे रहे हैं। तो उनों से हम सीख सकते हैं कि अपनी स्थिति से कैसे हम अन्य आत्माओं को मदद करें, और हर प्रकार के जो भी बात सामने आए उस बात को हम पार कर सके और आत्माओं को भी हम पार तारें। परंतु जो बाबा के नए नए बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि अभी तक योग जो ज्ञान में बहुत समय से चले हैं वो ही अपना कंप्लेन देते हैं कि अभी तक योग की स्थिति वो नहीं है जो हम चाहते हैं। तो उन्हों के लिए ये बात थी कि कदम कदम पर ज्ञान यूज करते चलो, बाबा का हाथ पकड़ते चलो, तो जरूर दिन भर हमारा योग रहा होगा, तो फिर तो जब शांति से बैठने का चांस रहा तो बिल्कुल योग अग्नि बन जाती। और बाबा के जो नए बच्चे हैं उन्हों को लिए ये काम की बात तो है ही, परंतु वो शायद ये सोचते होंगे कि अभी तक हमने योग का अच्छी तरह से अनुभव नहीं किया है। तो मैं उन्हों को ये बात बताने चाहती हूँ कि बाबा की मुरली है योग के लिए एक बहुत बड़ा आधार। मैं साधन भी नहीं कहती, साधन तो आज है कल नहीं है, परंतु जो बाबा की मुरली है, जो ज्ञान है, वो है हमारे जीवन का आधार। तो अब जब योग को एक्सपेरिमेंट के तौर पर उठाओ कि जो मुझे ज्ञान की बात समझ में आई है और अच्छी लगी है, मुझे उस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आप देखेंगे कि आप ज्ञान को एक्सपेरिमेंट के रूप में लियो। जो भी बाबा ने बात बताई हो, मानो कि आज बाबा ने कुछ भी बताया हो कि अच्छा भूतों को भगाने की बात है, तो कैसे भूत भाग सकते, बाबा ने कहा बाबा का साथ लेकर के। वैसे तो बुद्धि से हमने इस बात को माना, विवेक ने माना, परंतु जब हम योग में बैठे, हम बाबा को सामने रख करके अपने अंदर जांच करें कि अभी तक हमने किस किस बात को जगह दी रखी है। अपने दिल के अंदर देखें, दिल तो वैसे यहाँ ही है आत्मा के अंदर, परंतु मैं हाथ यहाँ लगा रही हूँ, परंतु अपने अंदर जांच करें और बाबा के सामने बड़ी सच्चाई से उस बात को रखें कि बाबा हम रियलाइज कर रहे हैं कि ये हमें दुख दे रहा है और जो हमारे संबंध में है, साथी हैं, उन्हों को भी इस बात से दुख मिल रहा है। बाबा, आप अपनी लाइट और माइट से इस भूत को अब भगाओ। आपने रियलाइजेशन से, सच्चाई से बाबा के सामने बात रखी और आपको अवश्य ही ये अनुभव होगा कि बाबा जोश बिल्कुल निकाल रहा है और आत्मा को शीतल शांत बना रहा है। तो बाबा की मदद से आपको बहुत जल्दी ये अनुभव होगा। तो ये तो एक बात मैंने बताई, परंतु हर रोज आप मुरली से चार बातें निकालो जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सके। हाँ, ये चार बातें आपके नोटबुक में होंगी तो आपको अच्छा होगा, परंतु नोटबुक से भी ट्रांसफर हो जाए हमारे बुद्धि में। और हमारे बुद्धि में आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, वो बातें हमारे बुद्धि में घूमती रहे। और जब बैठो तीन मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जो भी टाइम मिले, आप उस बात को लेकर के आप बाबा के सामने रखो कि बाबा इसका मैं अनुभव करने चाहती हूँ। और आपकी बुद्धि शांत हो जाएंगी, वो ज्ञान की बात आई संकल्प के रूप में, परंतु बाबा के सामने रखा और बाबा ने बुद्धि को शांत बना लिया और बाबा उस बात के गहराई में आपको ले जाएंगे और अवश्य अनुभव कराएंगे। बाबा के सर्व संबंधों की बात आती, बाबा के सर्व गुणों की बात आती और साथ साथ बाबा के हर कर्तव्य की बात आती। जब हम कहते हैं कि हमको योग लगाना है और बस शांत होके बैठना है, तो उस शांति में फिर माया को चांस मिल जाता, अनेक और बातें घूम के आ जाएंगी और बुद्धि यहाँ वहाँ चले जाएंगे। परंतु जब आप अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से टॉपिक देख करके बुद्धि को बिजी किया, तो फिर बाबा उस बुद्धि को और आगे अनुभव कराएंगे। आज का संसार में एंटरटेनमेंट बहुत है, तो हम हमेशा देखते हैं कि बाहर की एंटरटेनमेंट हमको मिले। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को ये आंतरिक शक्ति नहीं होती जो अपने आप को एंटरटेन कर सके। बाहर का साधन नहीं होगा, कहेंगे अभी तो हम बोर हो गए, कुछ करने का नहीं रहा। और बाबा ने हमें संसार भर की बातें अंदर के लिए दी है जिसका हम अनुभव कर सकते, तो खुद को हम एंटरटेन करें बाबा के संग से, उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बाबा जो भिन्न भिन्न बातें बताते हैं वो हमको एंटरटेन करने के लिए, और हम खुद अपने आप को एंटरटेन करें। तो जो आपका बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ गया और आपको उसका अनुभव का रस आने लगा, तो फिर तो आप कहेंगे कि यही साधना मुझे अधिक से अधिक करनी चाहिए। आप वही अनुभव और आगे बढ़ाने चाहेंगे और आप कहेंगे कि यही मेरा जीवन है। तो हमारा साधना का जीवन बन गया, तो साधन कहाँ न कहाँ से अपने आप आते रहेंगे। उन साधनों का प्रयोग करने के लिए भी लोग, कलाएं वाले आते रहेंगे और बाबा की सेवा अपने आप ही बढ़ती जाएंगी। हमारा बुद्धि योग उसमें न कहाँ अटक जाए, हम अपने माइंड को उन सब बातों से फ्री रखें, सब बातों का त्याग, तभी फिर वो तपस्या अथवा वो साधना हो सकती, फिर सेवा तो ऑटोमेटिक है। तो न हमें साधन चाहिए अपनी स्व उन्नति के लिए, न हमें साधन चाहिए सेवा के लिए। ड्रामा अनुसार अपने आप भी आते रहेंगे, होता रहेगा, बाबा का कार्य अपनी संपन्नता पर पहुंच ही जाएगा। अभी मैं चाहती हूँ कि बस 10 मिनट के लिए थोड़ा हम योग का अनुभव करें। ये बातें साधना की आपको बताती रही हूँ, परंतु अब ऐसे अपने मन और बुद्धि को शांत करें जो अच्छी तरह से अभी से ही हम बाबा का आह्वान शुरू कर लेवे, और जो अभी थोड़े घंटे हैं बाबा की पधरामनी में, उस बीच में भी हम बाबा का साथ का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें। शांति से बैठे, अंदर की यात्रा करके अपने मन में ज्ञान के खजाने को खोल के देखें। बाबा ने कितने सीक्रेट्स हमें सुनाए हैं जो विश्व भर उन बातों की खोज में है, परंतु आज तक उन्हें नहीं मालूम। और बाबा ने मुझे अपना बनाकर सारा खजाना हमारे सामने रख दिया। अब जो खजाने से मैं रतन लेने चाहूं, बाबा मुझे छुट्टी दे रहा। मैं उस रतन को उठाती हूं जिस द्वारा मुझे सहज ही बाबा का अनुभव प्राप्त हो। बाबा ने कहा है, और सब बातों को बिंदी लगाकर खुद बिंदी बनकर बिंदी को याद करो। तो मैं देखती हूं कि जब जब मैंने अच्छी तरह से ड्रामा को समझकर बिंदी लगाई, तो मैं कितना फ्री हो गई और मैं आत्मा बिंदु बनकर मीठे प्यारे बाबा के साथ बिंदु जो सागर है उनसे मैं संबंध जोड़ लेती। शिव बाबा, आप तो रत्नागर है, कितने हमें सुंदर रत्न दिए और साथ साथ सौदागर भी है। आज मैं आपके साथ ऐसे सौदा करनी चाहती जिससे मुझे अनुभव हो कि आप कैसे जादूगर हैं। जब तक मैंने सौदा आपके साथ नहीं किया है, मुझे मालूम है कि मुझे जादू का अनुभव नहीं होगा। तो आज मैं मन बुद्धि मन वचन कर्म से सौदा ये करती हूं कि आपकी आज्ञा पर आपके श्रीमत अनुसार मैं मन में संकल्प उत्पन्न करेंगी, वचन भी वही बोलेंगे और कर्म भी वही करेंगे। मैंने आपको स्वीकार किया, जब आपने मुझे स्वीकार किया, अब ये सौदा पक्का। और अभी ही मैं देखती हूं कि बुद्धि हमारी आपके संग जुड़ गई है और इस दिव्य बुद्धि द्वारा मन को सही राह पर चलाने की शक्ति आ गई। और अब जो मेरे असली दैवी संस्कार थे, आपने जादू का खेल कर दिया। अभी ही मुझे अनुभव हो रहा कि वो दैवी संस्कार किस प्रकार के शुद्ध, श्रेष्ठ, समझदार और मीठे संस्कार है। मानव देव बनाने का जादू का कार्य आप ही कर सकते, और वो परिवर्तन जादू के समान मुझे अभी ही हो रहा। मैं आत्मा जब ऊपर से इस सृष्टि मंच पर आई थी, मैं सत्व प्रधान आत्मा थी। वो कितनी सुंदर, कितनी रॉयल, श्रेष्ठ और मीठी अवस्था है। अब आप मुझे वो अनुभव करा करके वो उसकी झलक दिखा रही हैं। बाप सर्वशक्तिमान और मैं आत्मा बाबा के साथ ईश्वरीय संतान के नाते से ईश्वर का वर्षा लेकर अपने वो श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर रही हूं। बाबा की लाइट और माइट विश्व में फैलती जा रही और अनेक आत्माओं को बाबा जागृत करते जा रहे। अब बाबा के साथ मैं वापस इसी साकार वतन में आती और यहां बाबा को जो कुछ कार्य कराना है मैं अपने को हाजिर रखती। साकार में आते भी बाबा को मैं साथ रखती। तो ये मेरी साधना चलती ही रहेंगी। कर्म करते बाबा को साथ रखते, वे देखेंगे भगवान का जादू कैसे चलता। ओम